صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اصل میں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کے ہوسٹ بھی ہیں، گیسٹ بھی بن جاتے ہیں کبھی کبھی، تو ٹائم ہو گیا ہے کافی، دیکھتے ہیں کب آتے ہیں۔ ہمارے یوسف بھائی، نام ہے ان کا یوسف بھائی، بزرگ ہیں ہمارے، تو ان کے ساتھ مزید آگے پروگرام کرنا ہے، عید کا پروگرام ہے، اور ہمارا خیال سے جی جی یہ یوسف بھائی ہیں، ماشاء اللہ۔ آئیے 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 آئیے، عید کا دن ہے تو ظاہر ہے رش بھی ملا ہوگا ان کو، گاڑیاں بھی ملی ہوں گی، بوٹیاں بھی کھا رہے ہوں گے کیونکہ پورا دن گزر گیا۔
اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔
عید مبارک۔
خیر مبارک آپ کو، بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کئی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔
آپ کا انتظار کر رہا تھا میں،
ہاں،
اور ویور سے پھر میں نے کچھ بات بھی کر لی، انتظار کرتے کرتے میں درود شریف پڑھنا شروع کر۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے،
ماشاءاللہ۔ یہ میسج تھا کہ اگر آپ کسی کا انتظار کریں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں،
کیا
انتظار کا انتظار ہو جائے گا، ثواب کا میٹر بھی آن ہو جائے گا،
کیا بات ہے۔ اور ویسے عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، مدینہ چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، تو سرکار پہ درود پاک پڑھنے کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا جائے،
انشاءاللہ
وقت کو کیش کیا جائے، ماشاءاللہ۔ اور سنا شہزاد بھی کیسے ہیں؟
اور تو مجھے پہلے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ تھوڑی دیر لگ گئی آپ کو، تو ظاہر رش تھا، چہل پہل تھی، گوشت تھا، ڈشز تھی، تو کچھ بوٹیاں ووٹیاں کھا کے آئے؟
الحمدللہ، آج خوشی کا دن ہے شہزاد بھائی، اور آج شکرانے کا دن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کا بھی دن ہے۔ الحمدللہ، جو رب نے ہمیں استطاعت دی، جو قربانی کرنے کا موقع اللہ نے دیا، اور جو چیز آئی، جیسے نا کہتے ہیں قربانی کرنے کے بعد کلیجی کے ذریعے کھانے کا جو نا وہ اسٹارٹ لیا جاتا ہے،
ناشتے میں کلیجی،
ناشتے میں کلیجی کھائی جاتی ہے، تو آج مدنی چینل کے ناظرین بڑا مزہ آیا الحمدللہ۔ اس کے بعد کھانا بھی کھایا، کچھ گوشت بھی الحمدللہ کھانے کا موقع ملا، الحمدللہ سم الحمدللہ۔
اچھا یہ بتا رہے ہیں، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا، اس میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ معلومات بھی ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت پور تکلف دعوت کا بھی اہتمام ملے گا انشاءاللہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، میں کیوں کہہ رہا ہوں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ یہ بزرگوں کا عید اسپیشل پروگرام ہے جس کا نام ہے، ابھی نہیں بتاؤں گا، تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں۔ ایک منٹ، وہ دن بھی آ گیا ہے۔ کون سا دن؟ عید الاضحیٰ کا دن، سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے، ہوتی آ رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی
انشاءاللہ،
تیسرے دن تک انشاءاللہ قربانی ہوگی۔ اور اسپیشلی ایک بات بتاؤں، بچوں سے یاد آیا کہ بچوں کو قربانی دیکھنا تو پسند ہی ہے، لیکن ایک چیز ہے، بچوں کو نا اونٹ کی قربانی سے بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ عید کے تیسرے دن جو ہے وہ امیر السنت ہمارے شیخ کے ساتھ اونٹ کی قربانی کی جو ہے ٹرانسمیشن ہے، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا، اس میں بڑے انٹرسٹنگ سوالات بھی ہوں گے، اونٹ بھی دکھائے جائیں گے، اونٹ نہار بھی ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟
مدنی چینل کے ناظرین، پہلے دور میں جو قربانی کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو قربانی کرنے والا اس بات کا خیال رکھا کرتا تھا کہ میں نے یہ گوشت کس کس تک پہنچانا ہے۔
اچھا،
وہ روایتیں، وہ طریقے، وہ محبتیں جو پہلے دور کی تھیں، کیا آپ کو اس دور میں وہ نظر آتی ہیں شہزاد بھائی؟
پہلے کے دور کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پہلے کا دور تو آپ کا دور یعنی بزرگوں کا دور کہہ رہے ہیں،
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے دور میں کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ میرا تجربہ ہے کہ دھیان رکھا جاتا تھا کہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں تو کس گھر میں قربانی نہیں ہوئی، اور وہاں تک میرے قربانی کا گوشت پہنچے، یعنی کہ میرے جانور کی قربانی کا گوشت پہنچے، اس چیز کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان روایت کو زندہ کرنا آج بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو جن کو استطاعت دی، جو قربانی کر رہے ہیں، یہ دراصل ان غریب لوگوں کی دل جوئی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے شہزاد بھائی، جو نہیں کر پاتے۔ آپ سوچیں نا شہزاد بھائی، کہ وہ لوگ جو منتظر ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ قربانی ہوئی اور میں آپ کا پڑوسی ہوں، اب آپ نے میرا دھیان رکھا، आपने कुर्बानी करते ही घर वालों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी कि सबसे पहले गोश्त यूसुफ भाई के घर पे पहुंचाओ। अब मैं मुंतजर भी था, इस इंतजार के बाद मुझ तक ये शराब जब गोश्त पहुंचेगा मेरे दिल में कितनी खुशी दाखिल होगी।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम कहीं जाने वाले हैं यूसुफ भाई,
सुभानअल्लाह
मंडी जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम नाजरीन को कुछ बताने चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? प्रोग्राम का नेम
हुआ था,
प्रोग्राम का नेम,
नेम।
अच्छा, प्रोग्राम का नेम जो है वो है आपने क्या देखा है।
सुभानअल्लाह।
तो इन बुजुर्ग से तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन आपने क्या देखा है ईद स्पेशल में, आगे क्या होने वाला है वो भी बताते हैं। अच्छा, मैंने मंडी का जिक्र किया ना, असल में इसको पूरा नहीं कहेंगे ना तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे।
मवेशी मंडी,
फ्रूट मंडी भी होती है, फल मंडी भी होती है, लेकिन आज जो है ना जाहिर है बकरा ईद चल रही है तो मवेशी मंडी है। मवेशी मंडी में ईद स्पेशल आपने क्या देखा है वो करेंगे। और मवेशी मंडी क्यों जा रहे हैं
भाई? मवेशी मंडी जाके उन बुजुर्गों से, उन इस्लामी से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी से तजुर्बात हासिल किए।
इसके साथ साथ ईद में पहले जानवर कैसे खरीदते थे, अब कैसे खरीदते थे, पहले कैसे पाले जाते थे, अब कैसे पाले जाते हैं, पहले व्यापारियों के क्या मसाइल होते थे, अब क्या होते हैं, पहले खरीदारों के क्या मसाइल होते थे, अब क्या होते हैं।
मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हकीकतन एक ऐसा मौजू है जिसको आप देर तक सुनेंगे ना, यानी कि आखिर तक देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। शहजाद भाई रवानगी है,
इंतजार नहीं करवाएं,
इंतजार नहीं करवाएं,
चलें चलते हैं हम अपने सफर की तरफ। आपने क्या देखा है मैं, हमारा अब सफर शुरू होगा, आइए हमारे हम सफर बन जाए,
आइए इंशाल्लाह। अस्सलाम।
अच्छा यूसुफ भाई
जी,
सफर की दुआ पड़ी ना?
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, अब सफर की दुआ में माहौल में ही पता चला है, पहले तो हम ऐसे ही थे बस, दावत इस्लामी का एहसान है हमारे जात पर,
जी जी,
हमारे नस्लों पर,
अल्हम्दुलिल्लाह
कि पता चला है कि ना यह सफर की दुआ भी होती है तो ये दुआ भी होती है। ईदे
कुर्बानी। शहजाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तक 88-89 में माहौल नसीब हुआ था ना।
अच्छा 88-89, यानी के जब मैं था सिर्फ 8 साल का।
अल्लाह अकबर,
बच्चे हैं आपके सामने सर।
यकीन माने के वो कुछ देखा, वो कुछ सीखा जो बाहर कहीं नजर नहीं आता,
इसीलिए तो हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है आपने क्या देखा है।
सुभानअल्लाह,
क्योंकि बुजुर्गों ने वो कुछ देखा है, माहौल में देखा है, माहौल से हटके देखा है, ईदों में देखा है, कुर्बानियों में देख रहा है, बहुत कुछ देखा है, तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम क्या है, आपने क्या देखा है। जब ये फ्रिज वगैरह नहीं होते थे या थे तो हमारे पास नहीं था,
जी जी,
तो गोश्त जो आता था ना तो मेरी दादी वो गोश्त को है ना कटिंग करके और उसकी मतलब है ना ऐसे लीरे बना के और उसको बीच में से कट करके, पूरा नहीं, एक बोटी है उसको बीच में से कट के ए साइज, ए टाइप साइज बन गया,
ए टाइप साइज।
अब उसको रस्सियों पे जैसे कपड़े सुखाते ना ऐसे लटका देते थे मसाले वसाले
ऐसे,
और वो इतने दिनों तक वही लटकी रहती थी और है ना सूखती रहती थी। तो मैं सोचता था कि ये क्या है, जब बाद में खाने को मिलती थी यार इतने दिन तक ये मसाला लगा के लटका दिए दादी माँ ने,
जी जी,
अभी क्या होगा। तो फिर जब उसको जो खिलाती थी मेरी दादी,
जी जी,
तो उसका टेस्ट ही अलग था।
सुभानअल्लाह।
एक तो वो फ्रीजर की जरूरत नहीं,
जी
वो एक प्रोसेस था जो बुजुर्गों के टोटके और वो चीजें थी
ऐसे,
एक वो प्रोसेस था उससे गोश्त सेव हो जाता था और उसके बाद उसकी जो डिश बनती थी उसको तलना, इसका कुछ भी बनाना, वो तली हुई तो मुझे याद है ऐसी कुरकुरी बोटी खाते थे और वो गोश्त भी नाराज नहीं होता था। नाराज इसीलिए कि ना अपने माहौल में नाराज आम व्यूअर के लिए खराब नहीं होता था,
खराब नहीं होता था।
तो ये भी मैंने देखा है, आपके दौर की बात बता रहा हूँ।
अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं
जी,
ये जो आइटम आपकी दादी माँ बनाया करती थी और आप मजे लेके खाते थे उसका नाम पता है आपको?
उसका नाम बोटियां थी, सूखी हुई।
नो 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 नो, उसको कहते हैं लीवरियां।
लीवरियां, अच्छा
इसका नाम है लीवरियां। ये गोश्त को सुखाया जाता था डोरी के ऊपर मसाला लगाने के बाद, जब वो सूख के कड़क हो जाया करता था उसको तल के खाते थे, वो बोटी भी कड़क होती होगी
जी, क्रिस्पी
क्रिस्पी टाइप की होती।
आजकल लोगों को पता है ना यार क्रिस्पी होना चाहिए, गोश्त क्रिस्पी होना चाहिए, बोटी क्रिस्पी,
तो उसको आइटम को कहते थे लीवरी।
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى
وصحبه وبارك وسلم।
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہمارا سفر جو تھا مویشی منڈی کی طرف وہ اختتام کو پہنچا اور اب ہم فائنلی مویشی منڈی میں ہیں اور جس جگہ موجود ہیں फील तो ऐसा आ रहा होगा कि मवेशी मंडी में किसी की शादी वादी हो रही है।
अल्लाह,
तो आपने तो कोई एहतमाम नहीं किया?
नहीं जी, मैंने कोई एहतमाम नहीं किया।
और मैंने भी नहीं किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हो चुकी है और यूसुफ भाई की तो हो चुकी होगी क्योंकि बुजुर्ग हैं। अच्छा, अब असल जो है ना, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक कैटल फॉर्म ही है, मुख्तलिफ खूबसूरत जानवर हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं। जी,
हम असल में इस मवेशी मंडी में जो आए हैं, हम यहाँ के मामलात को समझें और अपने दीनी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उन बातों को शरीयत में आगे बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की राह में जो जानवर कुर्बान किया जाएगा, ठीक है जी ना, वो कैसा होना चाहिए। अब माशाल्लाह जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ बहुत प्यारे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। अब अल्लाह ने जिसको ताकत दी है वो इतना खूबसूरत जानवर देकर जब अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा तो उसका दिल भी खुश होगा, अल्लाह कितना राजी होगा उससे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह।
अच्छा यूसुफ भाई, थोड़ी बहुत बात आपने इन्फॉर्मेशन तो शेयर की हमने नाजरीन से, लेकिन ये सेगमेंट एक हमने इसका नाम रखा हुआ है, बताएं ना नाजरीन को।
नाजरीन, इस सेगमेंट का नाम है मवेशी मंडी।
जी, मवेशी मंडी। मवेशी मंडी में क्या करने वाले हैं यूसुफ भाई?
हम इस मवेशी मंडी में कुछ गुफ्तगू इस तरह की करेंगे, जैसे कि हमारे शहजाद भाई कम उम्र है, मेरी उम्र ज़्यादा है, तो ख़रीदारी के अंदाज पहले वक्तों में क्या थे और आज के दौर में ख़रीदारी के अंदाज में क्या तब्दीली आई,
वो बुज़ुर्गों से बात करेंगे।
इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन उन बुज़ुर्गों से मालूम करेंगे कि उनके दौर में ख़रीदारी का अंदाज़ क्या था और आज के दौर में जो ख़रीदारी का अंदाज़ बिल्कुल तब्दील है। जैसे शहजाद भाई ने फरमाया कि हम किसी शादी हॉल में नहीं आए हुए, किसी तकरीब में नहीं है, जस्ट हम उसी जगह मौजूद हैं शहजाद भाई जहाँ पे मवेशी मंडी के अंदर जानवरों को बेचा जा रहा है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। इसी पे मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसकी मालूमात प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।
और बुजुर्गों से ये भी पूछेंगे, जाहिर है बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने अपना वक्त गुजारा होता है, कि पहले के दौर में कैसे खरीदारी करते थे, अब के दौर में क्या खरीदारी करते हैं, क्या फर्क आता है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, तो पहले के दौर में खूबसूरत और बड़े जानवरों की परवरिश कैसे की जाती थी, अब कैसे की जाती है, क्या फर्क देखते हैं। और दूसरा, एक उनसियत और मोहब्बत का ताल्लुक।
जी शहजाद भाई, ये एक ऐसा उनसर है कि गांव गोठ में उन इलाकों में जानवर को पाला जाता है। ऐसा भी देखने में आया कि जब वो जानवर बेचने के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन मार्केट में आते हैं तो कभी कभी उनके आंसू बह जाते हैं। क्यों? उनसे मोहब्बत हो जाती है। 2-3 साल तक जो जानवर अपने घर में पाला गया, उसके बाद जब मार्केट लाके उसको बेचा जाता है तो एक अंडरस्टूड बात है कि आंखों से आंसू बहना कभी कभी बन जाता है। किसी जानवर से मालिक की जो मोहब्बत और उनसियत होती है काफ़ी बढ़ जाती है।
बुज़ुर्गों की तरफ चलते हैं, उनसे ये सारी बातें करते हैं और कुछ सवाल करते हैं, उनके जज्बात सुनते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। यूसुफ भाई देख रहे हैं माशाल्लाह,
सुभान अल्लाह, इसकी मोहब्बत को भी महसूस कर रहे हैं शहजाद भाई।
जी जी,
ये जानवर कितना प्यार करवा के सुकून महसूस कर रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बज़ाहिर बेज़बान है लेकिन आपके प्यार करने को ये भी समझते हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत में एक ऐसी ताकत रखी है, अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए ना, आपको हर चीज़ इसमें पोशीदा नज़र आएगी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। जिसको प्यार देंगे ना तो आपको प्यार देगा माशाल्लाह। तो इसको हम जो प्यार कर रहे हैं, ये महसूस कर रहा होगा इंशाल्लाह कि हम इसको प्यार कर रहे हैं।
अल्लाह नजरे बस से बचाए और जिनके नसीब में है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए,
आमीन।
हमने बुजुर्गों से मुलाकात करनी थी तो ये एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, बुजुर्ग जानवर से, अब है ना बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं बूढ़े हजरात से और उनसे बात करते हैं
इंशाल्लाह। आइए,
ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनो।
मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम खड़े हैं एक बुजुर्ग के साथ। शहजाद भाई, क्या पूछेंगे इनसे आप?
ये व्यापारी हैं, आप मुझे ये बताएं कि ईद उल अज़हा पर है ना, आपने बहुत सारे पहले कोई ऐसे जानवर देखे हो खूबसूरत?
जानवर तो आते रहते हैं जी।
अच्छा।
अच्छे भी आते हैं, माड़े भी आते हैं, सब। अच्छा। किस्म का आता है।
तो पहले पहले के दौर में मतलब क्या खूबसूरती का क्या मयार था,
यही खूबसूरती थी, मान लो
ऐसी
वैसी
खूबसूरती थी।
खूबसूरती थी।
पहले दौर में जब कोई जानवर खरीदने आता था तो आपसे क्या मांगता था, और आज जो लोग जानवर लेने आ रहे हैं वो आपसे क्या डिमांड करते हैं?
पहले जो लोग आते थे ना, दो दो तीन तीन मतलब भी जानवर ले लेते थे,
अच्छा,
ठीक है, आ जाते थे, दो तीन दिन में भी आ जाते थे, ठीक है। अब जो आते हैं जानवर जो खरीदते हैं, बस सब अपनी मर्जी करते हैं, अच्छा दाम नहीं लगाते, वही अखलाक प्यार नहीं है।
उनके जहन में तो ये होगा ना, भाई मेरे जानवर है ही 20,000 के, मैं 30,000 क्यों दूँ, शायद ऐसी बात हो।
नहीं, वो बात नहीं 10-20 की,
जी,
लेकिन वो जो है ना पहले वाला जो प्यार मोहब्बत से बात करते थे
अच्छा,
वो नहीं है,
लहजों में तब्दीली
लहजों
है,
में तब्दीली
लहजों
है।
में तब्दीली, क्या पुराने
नए
वक्तों में क्या
नए नए
चीज
लोग
होगी?
हैं ना
अच्छा,
इसीलिए।
नई
अच्छा
नस्ल।
कुछ ऐसी बात बताए ना कि पहले के दौर में या अभी, यानी आपने ऐसा फील किया हो कि यार ये जानवर को आपसे और आपको जानवर से बहुत ज्यादा उनसियत हो गई हो, मोहब्बत हो गई हो, तो ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई जानवर है आपके पास?
नहीं, वो ये है ना, अभी मोहब्बत तो करता है, जानवर भी करता है, हम भी करते हैं, तो वो जानवर फिर खुद ब खुद हमारे साथ मोहब्बत करता है।
अच्छा,
अगर हम नहीं मोहब्बत करेंगे जानवर कैसे मोहब्बत करेगा?
तो आपका मोहब्बत का क्या तरीका होता है?
मोहब्बत का ये, उनको प्यार करना, अच्छा
अच्छा
चारा डालना, हाथ फेरना, उसकी सफाई करना, वो
अच्छा और
लेट जाता।
जानवर कैसे मोहब्बत करता है?
जानवर वो मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती है, जब प्यार करे, बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चा फिर कहेगा ठीक है, कोई भी बच्चा है उससे आप प्यार मोहब्बत करेंगे तो वो आपको मोहब्बत करेगा,
मोहब्बत कर रहे
देखेगा
हो,
तो वो आपके पास भागा या आएगा।
क्या बात है। कोई तजुर्बा खुद ही शेयर करें, हम तो सवाल कर रहे हैं सबसे, आप हमें बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
जब हम पुरानी मंडी में आते थे ना, तो वहाँ पे लोगों का इखलाक तो वैसे भी अच्छा था, और एक दफ़ा बहुत गर्मी थी, मैं लाइन में लगा हुआ था, तो वो अपना हीट स्ट्रोक की वजह से मैं नीचे बेहोश हो गया।
अल्लाह हू
तो एक
अकबर।
कराची के नौजवान भाई थे, वो मुझे जानते भी नहीं थे, और हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे उन्होंने मेरी मेडिसिन कराई, और
माशाल्लाह,
वहाँ से रिक्शा लेके मुझे मंडी में छोड़ा, और मेडिसिन के पैसे भी उन्होंने अदा किए, और मैंने देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैसे भी मुझसे नहीं लिए थे। ये मेरी ज़िंदगी में वाकया हुआ था। लेकिन ये है कि कराची वाले बहुत अच्छे हैं, हम मानते हैं, अगर ये कराची में इतना बड़ी कुर्बानी होती है जो पाकिस्तान में नहीं होती है, जो हमारा तजुर्बा काम
जी जी
करता है।
सही।
और हमारे बुज़ुर्ग जो पहले इंटरव्यू दे के गए हैं कि उनकी थोड़ी सी दिलेदारी होती है अब, लेकिन ये अगर दिलेदारी भी ना करें तो कराची इज़ किंग है, हम मानते हैं कराची को, कि इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, ये सारा कराची हो या लाहौर हो, हम सब भाई भाई हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह।
और कुर्बानी के हवाले से जो जज्बा हमने कराची में देखा है वो तकरीबन पाकिस्तान में कहीं और नहीं है, और हम कराची को सलूट पेश करते हैं कि वो इतना बड़ी कुर्बानी करते हैं, तो हम ये काम करते हैं, हम उनकी बदौलत ही ये काम करते हैं। कराची कुर्बानी करना इतना बड़ी छोड़ दे, हमें मोहब्बत प्यार करना छोड़ दे, तो हम ये जानवर पालना ही छोड़ देंगे। तो जिस तरह ये जानवर में पालने में हम शौक़ है, तो ये भी शौक़ से कुर्बानी करते हैं, मानते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हम महीने की कमेटी करते हैं और साल के बाद हम कुर्बानी करते हैं, तो उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि कराची वालों की बदौलत ही ये काम है।
उम्र कितनी है आपकी?
72।
बस 2-4 साल का फर्क है।
नहीं सर, 53, 72 फर्क है सर।
अच्छा, 53 गए आप, छुट्टियां मिला के?
जी छुट्टियां सब मिला ली है तकरीबन कमोबेश। तो इस मंडी में क्या जानवर खरीदने के लिए आए या बेचने के लिए आए?
वो बच्चे आए खरीदने के लिए।
कौन सी मोहब्बत आपको मंडी तक खींच लाई है?
बस कुर्बानी है अल्लाह के नाम।
अल्लाह के नाम की कुर्बानी आपको यहाँ तक खींच लाई है।
सुभान अल्लाह।
जब आप लोग यहाँ से ना जाते हैं, ईद भी तो मनानी है ना, तो ईद कैसे मनाते, कब मनाते हैं?
सर ईद का तो हमें पता यही चलता है कि गाड़ी में नींद कर रहे हैं।
ईद के दिन घर पे नहीं पहुँचते आप?
बड़ी मुश्किल से।
यूसुफ भाई, माशाल्लाह बुजुर्गों की बातें सुनी
अल्हम्दुलिल्लाह,
और इन बुजुर्ग की भी बातें सुनी
अल्हम्दुलिल्लाह,
और बुजुर्ग भी देख रहे होंगे हमें, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हुई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान किए बुजुर्गों ने, उस पे जानवरों के कीमती होने पर, और उस हवाले से भी कुछ बातचीत हुई, खूबसूरत हो, कीमती हो वगैरह, तो उस हवाले से कुछ फरमाना चाह रहे हैं आप?
मैं एक हदीस पाक बयान करूंगा।
जी जी जी।
असल में शहजाद भाई, ये जो अमल है ना, ये अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया, अब जो लोग अल्लाह की राह में पेश करते हैं तो बेहतर चीज़ पेश करनी चाहिए। तो इसके मुतालिक हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए दो बड़े सींगों वाले चित कुबरे यानी सफ़ेद व सयाह और खूबसूरत मेंढे अपने दस्ते मुबारक से ज़बह फरमाए।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
यानी कि यह इससे मालूम होता है कि जानवर की खूबसूरती और नस्ल का ख्याल रखना सुन्नत है, यानी कि बेहतर चीज़, बेहतर से बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान की जाए। शहजाद भाई, ये हमारे सरकार ने हमें तालीम इरशाद फरमाई,
अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हमें चाहिए कि हम जब भी कुर्बानी करने का अल्लाह ताला मौका अता फरमाए, हमारी हैसियत हो, हम साहिब निसाब हों, तो बेहतर चीज़ तलाश करें, और मिलती है शहजाद भाई। बंदा घर से नियत करके निकलता है तो बेहतर चीज़ मिलती है। कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं कि अल्लाह ताला आसानी फरमा देता है, माशाल्लाह ना। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट मवेशी मंडी या मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ।
एक मिनट, लेकिन अगले सेगमेंट पे जाने से पहले अनाउंस नहीं करेंगे हम,
अल्लाह हू
अभी।
अच्छा,
अगले सेगमेंट की जगह पर जाएंगे, फिर बताएंगे कि अगला सेगमेंट क्या है। चलें
चलें
चलें,
सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे शहजाद भाई, इस अंधेरे में मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप?
अंधेरा लग रहा है आपको?
जी जी,
बैकग्राउंड पे तो अंधेरा है ही। अब बैकग्राउंड को तो ज्यादा लिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अंधेरे से रोशनी में लाता हूँ। लाइट, ये हो गई रोशनी।
सुभान अल्लाह।
तो ये हमारा एक फॉर्मेट है, और जाहिर है सामने हमारे रिक्वायरमेंट है, जब नजर आएंगे तो लोग सुनेंगे, वरना बोलेंगे पता नहीं कौन सी शख्सियत है, कौन है, क्या बातें कर रहे हैं, कोई चेहरा तो दिखाए, तो चेहरा तो दिखा दिया। इसलिए ये आर्टिफिशियल रोशनी की जरूरत है, सन नहीं है, नाइट है। और आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, मंडी की रौनक आपने देख ली।
जी जी,
वहाँ पे काफी लाइटें थी, रौनक थी, तो आपको यहाँ पे
रोशनी याद रह गई, दरअसल अंधेरा देख के अजीब सा लगा।
उस मुकाबले में ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ डल माहौल
है,
लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं ना,
जी जी,
वो लाइट माहौल भी है और खास माहौल भी है। कुछ वीआईपी, बल्कि वीआईपी नहीं, वीवीआईपी लोगों से मिलेंगे।
सुभान अल्लाह।
क्योंकि एक तो बकरीद में वीवीआईपी जानवर भी होते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन एक ईद के दिनों में जो वीवीआईपी पर्सनालिटीज होती है ना,
जी जी जी,
वो आज हमारे साथ है।
अच्छा,
हम उनके करीब पहुंचते चले जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, खैरियत से हैं
आपकी?
आपको बहुत ईद मुबारक हो।
आपको भी खैर मुबारक हो।
अस्सलाम
वालेकुम,
कैसे बुजुर्ग? ठीक है, आपको बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपको? बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं भाई? आपको बहुत ईद मुबारक हो।
अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ऐसी कई ईद
नसीब। ये बाबा जी हमसे पूछ रहे थे,
खुशी का
दिन है। बाबा जी से मुराद यूसुफ भाई, ये पूछ रहे थे कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो इनको मैंने बताया कि कुछ वीआईपी लोगों से मिलाने लेकर आ रहा हूँ।
हकीकत हकीकत, हम जहाँ पहुँचे हैं, अब हम आपको जो बताएंगे ना, एक्चुअल और रियल खुसूसी लोग हैं माशाल्लाह। ये शख्सियात हैं इन मायनों में कि इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है।
और क्या जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, थोड़ा बैठ के सेगमेंट बताते हैं पहले, क्योंकि ना सस्पेंस क्रिएट किया है, तो अभी पहले सेगमेंट बताते हैं, उसके बाद इनका तारुफ करवाते हैं। सर प्लीज, इंतजार की घड़ियां खत्म हो यूसुफ भाई।
सुभान अल्लाह।
और हम मवेशी मंडी में थे, और अब हम मौजूद हैं जिन हजरात के साथ, वो वीवीआईपी इसलिए हैं, ये बुजुर्ग कसाब हैं।
मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पहले सेगमेंट में मवेशी मंडी में थे, और वहाँ हमने माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे जानवर भी देखे और उनको प्यार भी किया। जैसे हमने मवेशी मंडी में बहुत प्यारे प्यारे जानवर देखे जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे, इसी तरह जैसे वो निस्बत मिलने की बरकत से हमारे लिए बाई से कदर हो गए, अब इसी तरह उन पाकीज़ा राह पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों को जो कुर्बान करेगा, यानी कि कसाब इस्लामी भाई, वो भी यानी कि काबिल कदर है ना। मिसाल के तौर पर मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे कसाब इस्लामी भाई جب ذبح کرنے کے لیے جانور کو لیٹاتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو ایک ایسا نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے شہزاد بھائی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر جانور ذبح ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ جو خون بہایا گیا اور جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، ایسے انرجی بڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔
انہوں نے قصاب حضرات کی بات کی، ہمارے ساتھ بزرگ قصاب موجود ہے، ان کا نام پوچھیں گے، ان کی عمر پوچھیں گے اور آج کا دن ان کا کیسا گزرا، کیونکہ آج رات ہو گئی ہے
جی،
اور پہلے دن کی قربانی بڑی مشہور ہے، کیونکہ نا زیادہ تر لوگ پہلے دن کو ہی ہے نا جانور ذبح کروانا پسند کرتے ہیں، پھر دوسرے تیسرے دن بھی ہوتی ہے لیکن پہلے دن بڑے یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اچھا دوسرا، کیونکہ اتنے سارے قصاب حضرات ہیں نہیں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں الحمدللہ پاکستان میں، تو کچھ ہے نا برساتی مینڈک بھی نکال آتے ہیں۔ برساتی مینڈک سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نا جیسے نیم حکیم ہوتا ہے نا، اسی طرح نیم کسائی بھی نکل آتے ہیں نا، جن کو اگر آپ کو کوئی لکڑی دے دے تو اس کا بھی چورا کر دے، تو یہ تو جانوروں کی ہڈیوں کے کیا برکس بنا کے رکھ دیتے ہوں گے۔ اور نا جانور ذبح کرنا آتا بھی ہے نہیں آتا ہے، سب ہی چل رہا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔
آپ کا نام کیا؟
محمود احمد قریشی۔
سبحان اللہ، آپ کی عمر کیا ہے محمود بھائی؟
میری عمر 70 سال۔
ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے صاحب؟
میرا نام ہے جی محمد جمیل قریشی۔
آپ کی عمر کتنی جمیل بھائی؟
یہ 65 سال۔
65 سال عمر ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ کا صاحب 70 سال کے موجود ہیں،
قادری
شہزاد بھی بہت زیادہ ہوگا، ایسے ہمارے جمیل بھائی ماشاء اللہ، جو ان کے چہرے کی رونق اور خوشی نا عید والی خوشی نظر آ رہی ہے، خوشی ہے ماشاء اللہ ان کے چہرے کے اوپر۔
آپ کو آئیڈیا ہے، آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے جانور ذبح کرنا شروع کیے تو کتنے جانور ذبح کر لیے ہوں گے ابھی تک؟ تعداد یاد نہیں ہے، لا تعداد ماشاء اللہ۔
اچھا اب ہم اپنے بائیں طرف آتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے حاجی صاحب؟
میرا نام وکیل احمد قریشی اتاری ہے۔
ماشاءاللہ،
نام کا تو وکیل ہوں لیکن پیشہ میرا گوشت فروش ہے۔ گوشت
کا نام وکیل تھا، وکیل ہی بن جاتے؟
نہیں، یہ میرا جو سمجھیے کہ خاندانی کام ہے، میرے والد صاحب، میرے دادا سب اسی فیلڈ سے وابستہ رہے۔
سر آپ کا نام؟
محمد اعجاز قریشی اتاری۔
کیا محمد اعجاز قریشی اتاری، کتنے جانور کاٹ لیتے اس عمر میں بھی آپ؟
ابھی اس موجودہ پوزیشن میں جو ہے تقریباً 4-5 میں کاٹ لوں گا۔
ماشاء اللہ، 63 سال کی عمر اور ابھی بھی یہ 4-5 جانور کاٹ سکتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے کسی نے کبھی جانور کاٹا ہو؟ ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات ہے نا بچوں کو تو انسیت ہو ہی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے جانور سے، تو جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا قصاب حضرات تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں کاٹے ہیں، امی کو منع کرتے ہیں، ابو کو بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہے نا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بچے تو رو رہے ہیں اس گھر کے، جس گھر کے میں جانور آئے اس کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہے نا بڑے بھی رو رہے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھا ہو کہ یار وہ ابو بھی رو رہے ہیں، تو ان کے دادا بھی رو رہے ہیں، تو بچے بھی رو رہے ہیں، تو پوتے بھی رو رہے ہیں، گھر والے سارے رو رہے ہیں۔
2.25 سال پالنے کے بعد انہوں نے ذبح کری اور سبھی کی آنکھیں نم تھیں، گراتے وقت وہ بچیا جو ہے نہیں گر رہی تھی، بچیا کا جو مالک تھا تو اس نے مجھے کہا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے بلوایا تھا، وہ خود آیا جانور کے پاس اور جانور سے کہا بھوری کیا بات ہے، بھوری وہیں تھم گئی اور وہیں آرام سے لیٹ گئی۔
اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے کہ کبھی کوئی ایسا جانور، تگڑا جانور، اونچا جانور آپ کو ٹکرایا ہو، عجیب و غریب صورت حال پیدا ہو گئی ہو؟
نہیں، اللہ کا
ہوا ہے
کہ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی پیش آتے ہیں جو زندگی بھر اس کو بھلا نہیں پاتا۔
اچھا ایسا واقعہ ہے؟
ایسا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ، لیبر کے ساتھ ذبح خانے میں ایک بچیا گروا رہا تھا، بچیا کیا تھی، وہ بچیا ٹکر بھی مارتی تھی اور لاتیں بھی چلاتی تھی، اتنی خطرناک، اور زیادہ وزنی بھی نہیں، کوئی 80-90 کلو گوشت کے ایک بچیا تھی، اتنی خطرناک بچیا کہ وہ ٹکریں بھی مارے اور لاتیں بھی چلائیں۔ وہ ہم نے اس کو جیسے گرانے کی کوشش کی اس نے رسی توڑائی اور بھاگ لی۔
اچھا
جیسے ہی وہ بھاگی وہ جہاں بھی اس کو عوام نظر آئی نا کھڑے ہوئے لوگ، وہ ان کی طرف دوڑنے لگی، اب ہر آدمی بچتا رہا، ہٹتا رہا پیچھے، وہ نکل کر بھاگی باہر بھاگی تو فیکٹریوں کا ایریا تھا، چاروں طرف فیکٹریاں، وہ ایک فیکٹری میں گھس گئی جہاں پہ نا چربی پکائی جاتی ہے، وہ جب اس کے ہم قریب جائیں تو یقین کریں آپ وہ اس قدر خطرناک کہ وہ دور سے لپکے دوڑے ہمیں مارنے کے لیے ٹکر۔ اچھا ہم اس سے بچ کے کم سے کم 100 فٹ دور کھڑے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ तेजी से भागी चली आई।
कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं?
ये तकरीबन कोई 18-19 साल पुरानी बात है। जी हाँ, तो अब वो बचिया जब हमारी तरफ दौड़े, हम भी दूर हटके खड़े हो गए, मेरे साथ और भी 2-3 अफराद थे वो भी खड़े हो गए, कहने लगे अब इसको काबू कैसे करें। अच्छा, उस बचिया को हमने, जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम कभी ज़िंदगी में ऐसी बातों को भुला नहीं सकते, वो ये थी कि बचिया जब भागी और हम उससे 100 फुट दूर खड़े थे, तो बचिया अपने अगले पैरों से ज़मीन को ऐसे करती थी, ऐसा लग रहा था कि वो हमें अपनी तरफ बुला रही हो कि आओ मेरे पास, अब मैं देखूं तुम्हें। हम तो इसी कोशिश में थे कि इसको कैसे काबू करें, हम तक लपकती रही। जो भी हमारा करीब जाता ना, वो उसको टक्करें मारने के लिए ऐसी भागती, बड़ी रफ्तार से आती। लेकिन एक वहाँ पर कढ़ाई रखी हुई थी, कम से कम उसमें 30-40 मन उसमें चर्बी पकती थी, बड़ी कढ़ाई थी। हम उसके पीछे हो गए, वो जैसी लपकी ना, आके कढ़ाई में गिर गई, उसमें कच्ची चर्बी पड़ी हुई थी, उसके पैर फंस गए। अच्छा। हमने फिर चारों तरफ से उसको पकड़ा और उसको काबू किया और फिर ज़िबा खाने में लाके ज़िबा कर दी।
वाह वाह वाह।
अगर किसी को समझाए तो ना भी मानते नहीं।
वकील भाई
जी,
तमाम कस्साब इस्लामी भाइयों को कि जब जब मौका मिले ना तो मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हो जाए। अब मदनी मुज़ाकरे में आएंगे, बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत बाकायदा तौर पर कस्साब इस्लामी भाई की तरबियत फरमाते हैं, उनको एहतियातें बताते हैं कि किस तरह क्या काम किया जाए। मैं कहता हूं कि शहजाद भाई, इंसान अपने इज्जत को अपने हाथों से ज़ाया ना करे। अब ये गोश्त रख लिया, ये जनाब मैंने गोश्त लिया है भाई, जब आपकी उजरत तय हो गई, अब आपका सवाल बनता नहीं है कि ये मैंने अपने लिए रख लिया है। तरीक़ेकार ये हो कि आपकी चूँकि उजरत तय हो गई, डिसाइड हो गया, आपको रकम मिलनी है, आपको भी पता है। अब अगर साहिब खाना के जिसके घर पे आप कुर्बानी करने गए हैं, वो आपको गोश्त दे, वो आपको खाना पेश करे, तो ये एक इज्जत से लें। मैं तो कहता हूँ कि एक आधा वो मना भी करे इंसान कि नहीं आप लोग लें, आप खाएं, कोई मसला नहीं है। जिसकी उजरत दी जा रही है उस काम को भी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी महारत के साथ मुकम्मल करें, क्योंकि मेरे आका का फरमान है ना शहजाद भाई, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि जब तुम में से कोई काम करे तो उसे एहसन तरीके से, यानी मजबूती और महारत के साथ करे।
माशाल्लाह, क्या बात।
यानी कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं जो क़यामत तक हमारे काम आने। ये कस्साब इस्लामी भाई या किसी भी शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाई अपने काम से इंसाफ करे और काम को सही तरह करेगा तो इंशाल्लाह उसको उसकी बरकतें भी मिलेंगी।
अब हम जाते जाते कहीं और जाएंगे। अब
हम कहाँ जाएंगे
और हम कहाँ जाएंगे ये हम अभी नहीं बताएंगे। चलें
चलें। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल प्रोग्राम आपने क्या देखा है, और आज हम जिस सेगमेंट पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह भी आपको बताएंगे, लेकिन ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज़ होने वाला है और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात देने के लिए हम फिर आपके पास हाजिर हुए हैं। सेगमेंट कौन सा है हमारे शहजाद भाई आपको बताएंगे इंशाल्लाह।
जी, सेगमेंट हमने मवेशी मंडी में भी किया, इसके बाद हमने कस्साब इस्लामी भाइयों के साथ भी किया, और अब हम जो सेगमेंट करने जा रहे हैं वो भी ईद बकराईद से रिलेटेड है। सेगमेंट का नाम है कैटल फार्म।
सुभान अल्लाह, कैटल फार्म।
कैटल फार्म में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे।
ये कैटल फार्म वाले शहजाद भाई बड़े मसरूफ होते हैं और अब थोड़ा सा वक्त मिले तो बैठेंगे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह एक अनोखी गुफ्तगू होने वाली है, बहुत अच्छी, और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम आखिर तक देखिएगा, मालूमात का भी खजाना मिलेगा और इंशाल्लाह इसके साथ साथ सबसे पहले हम दीनी गुफ्तगू को भी सुनेंगे कि ये बकरा ईद पर हम जो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं इसके मुतालिक भी इंशाल्लाह बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी।
तो मदनी चैनल के नाजरीन, हम बात करते हैं, इनसे नाम पूछते हैं, इनका काम पूछते हैं, इनसे उम्र पूछते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली कुछ लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और माजी के तजुर्बात भी है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए ताकि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ।
मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी है।
अच्छा आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक।
आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
अच्छा आसिफ भाई, आप एज बताइएगा अपनी कितनी है?
मेरी एज इस वक्त 57 ईयर्स।
57 ईयर्स, अच्छा। और आप क्या करते हैं?
कैटल से जो मुंसलिक हुआ ना, तो मुझे चार पाँच साल हुए हैं, मगर कुर्बानी का जानवर जो है ना, परचेजिंग ये तकरीबन समझ ले के 87, 86, 85 से हम लोग करते आ रहे हैं।
38-40 साल का अरसा आपको इस शोबे से दीगर मामला को आप देखते आ रहे हैं माशाल्लाह।
बिल्कुल
जबरदस्त।
और ये मैं आपको बहुत बड़ा उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब फैजान मदीन अली था और लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी शहीद मस्जिद में होते थे और वहाँ पे हम जानवर जो है ना वो पहुँचाते थे।
अच्छा
हाँ, फिर उनकी मतलब 4-5 इलाके होते थे जहाँ पे हमें 18-20 जानवर ये पहुँचाने होते थे। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ।
कैसे आप, ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरी तरफ से आपको दिली ईद मुबारक हो।
अच्छा, दिली ईद मुबारक और ईद मुबारक में क्या फर्क है?
ईद मुबारक तो सब कहते हैं शहजाद भाई, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इस इस्लामी को दिल से मुबारकबाद दूं। अच्छा। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला दिली ईद मुबारक कबूल कीजिए।
माशाल्लाह, मेरी तरफ से भी दिली ईद मुबारक।
मेरी तरफ से भी दिली ईद मुबारक।
क्या नाम है आपका इस्लामी भाई?
शौकत अली।
कैसा गुजरा माशाल्लाह ईद का दिन आज आपका?
बहुत अच्छा।
मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपने क्या देखा है। आइए अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं।
क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है अतीक राजपूत।
अच्छा, इनका नाम तो मुझे मालूम था, लेकिन है ना वो एक रस्मन सबसे नाम पूछा तो इनसे भी पूछा, वरना नाराज हो जाते यार ये क्या मुझसे नाम नहीं पूछा।
नहीं नहीं शहजाद भाई, आज नाराजगी नहीं है।
आज नहीं है?
आज नहीं,
ईद है।
आज ईद का दिन है।
आपकी उम्र बताइए पहले।
मेरी उम्र है 57 साल। तो आज ईद का दिन है तो इसमें तो गोश ही गोश होगा, कलेजी होगी, मगज होगा, ऐसा ही सिलसिला कुछ लग रहा है।
मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ मुंह में पानी पानी से आपका भी आ रहा होगा ना कि मगज का सुन के जनाब, बोटियों का सुन के। मेरे रब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उस रब ने ये ईद कुर्बान जो हमें अता फरमाई ना, ये बरकत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है कि उसकी राह में जानवर कुर्बान किया जाए
और खून बहाया जाए।
और खून बहाया जाए। मस्जिद गुफ्तगू होगी, हम चलते अब अगले मेहमान की तरफ।
अच्छा, इनको ईद मुबारक कह दें वरना बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे।
अतीक भाई, मेरी तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक हो।
आपको भी ईद मुबारक।
मेरी तरफ से भी ईद मुबारक।
शहजाद भाई, आपको भी ईद मुबारक हो।
ईद के तीसरे दिन ऊँट की कुर्बानी है।
सुभान अल्लाह।
तकरीबन कमोबेश 4 बजे और 4 बजे के बाद ऊँट की कुर्बानी होगी, देखना मत भूलिएगा।
मदनी चैनल पे लाइव देखेंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। क्या नाम है आपका भाई?
गुलाम साबिर अत्तारी।
गुलाम साबिर अत्तारी भाई, माशा अल्लाह। हुजूर, मेरी तरफ से और हमारे शहजाद भाई की तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक।
खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक।
शहजाद भाई को भी ईद मुबारक। कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी माशाल्लाह? कैसा लग रहा है ईद का समा, कैसा माहौल माशाल्लाह बना हुआ है?
बहुत प्यारा माहौल बना हुआ है। ईद का दिन है,
अल्लाह बरकत नसीब फरमाए।
देखो आशा है ईद के दिन मुर्शिद पाक अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हो जाए।
सुभान अल्लाह, क्या
मुलाकात हुई थी।
हो जाए। कर रहे हैं।
बस आप तमन्ना भी रखें, दुआ भी करते रहें और बस इंशाल्लाह हो जाएगी।
इंशाल्लाह। गुलाम साबिर भाई, माशाल्लाह आज का दिन बड़ा पुर रौनक है, बरकतों से माला माल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, आपने क्या देखा है, और सेगमेंट कौन सा है? कैटल फार्म का, जिसमें हम कैटल फार्म के इस्लामी भाई से बातचीत करने के लिए बैठे हैं। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं हमारे आसिफ भाई की तरफ। मैं आपसे सवाल ये करूँगा आसिफ भाई के, कैटल फार्म से आप वाबस्ता हुए, 5 साल के करीब का आपको अरसा हुआ, इन 5 सालों में आपने ज़रा कई जानवर लिए होंगे, बेचे होंगे, पाले होंगे, नशोनुमा की होगी, कोई ऐसा जानवर आपके नज़र से गुजरा या आपने देखा या आपके पास था कि यार ये जानवर जो था ना, ये किसी को देखे ना देखे मेरे पास खुश होता था और दूसरों को कभी मारता भी था, लेकिन मैं जब बैठता था तो मेरे करीब आ जाया करता, यानी कि उनसियत उससे आपकी और आपकी उससे उनसियत का क्या आलम, तो कोई ऐसा जानवर आपके पास हो उसका जिक्र कीजिए ना हमारे साथ।
मैं 2 महीने जो है ना मुल्तान शरीफ में भी रह के आया हूँ।
अच्छा माशाल्लाह। हाँ, इसी काम के हवाले से?
इसी काम के हवाले से। उस वक्त मेरे पास मुल्तान में एक, जिसको हम पाला बोलते हैं,
पाला
पाला यानी भैंस का बच्चा।
अच्छा, भैंस
पाला,
ठीक हो गया।
वो था सवाती, पिंक कलर में जो होता है ना, वो बहुत छोटी उम्र में आया था, 2-3-4 महीने में उसने कद निकाल लिया था। मैं उसको यहाँ छोड़ के ना मैं पहले एक और वाले पे चला गया, यानी हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक और वाले की ज़रूरत थी हमें, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पर आया हूँ तकरीबन 15-20 दिन के बाद, तो पता चला भाई ये तो बड़ा शोर शराबा कर रहा है, मार धार कर रहा है, उधम पसार कर रहा है। और यहीं आपकी बैक साइड पर ही मैं खड़ा था, तो मैंने देखा तो वो उसमें ना एक उछलना शुरू कर दिया ना उसने, एक जो होता है ना बेचैनी
हो गई।
तो मैं गया उसके पास, तो जो मेरे हैं यहाँ पे अरसलान भाई होते हैं, सलीम भाई होते हैं, सलीम भाई भाई
वो जो जानवर था बछड़ा,
हाँ, उसने जो है ना उसके अंदर थोड़ी बेचैनी हो गई।
अच्छा, वजह?
उधर ही बंदा हुआ था इधर ही बीच में।
अच्छा,
मुझे देखने के बाद फिर मैं गया उसके पास, मैं रस्सी खोलने लगा तो इन लोगों ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, यार आसिफ भाई ये खोलना नहीं, बड़ा मारता है।
अल्लाह
हू अकबर। मैंने इनकी सुनी नहीं, मैंने आवाज़ तो आई मगर मैंने, मुझे पता था ना, मैंने खोला है तो ये आके जो है ना ये मेरे से यहाँ पे आके सर मारने लगा, चिपक गया एकदम।
माशाल्लाह।
बोला यार आसिफ भाई इसने जो है ना दो बंदे हमारे भगा दिए और आपके साथ देखो ये किस तरह चल रहा है। तो ये बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि कुर्बानी का जानवर को आप उनसे दोगे ना तो वो आपके साथ सही चलेगा।
कैटल फार्म के अंदर जो केयर जानवरों की होती है क्या वो ज़्यादा होती है, और इसके बरअक्स जो घरों पे जानवर पलकर ईद कुर्बा के मौके पे शहर लाए जाते हैं उनकी तवज्जो कम होती है, क्या उनकी ग़िज़ा का फ़र्क होता है, क्या कुछ हमें बताएं ना।
पहले जो है ना कैटल फार्म तो मेरे ख्याल से नहीं होते थे शायद।
अच्छा,
कच्ची छतों पे नीचे हम भी मंडी जाते थे तो रात के वक्त आप परचेजिंग कर ही नहीं सकते थे।
अच्छा,
मुझे याद आ रहा है वो अंधेरा होता था, कन्वेंस नहीं था, बड़े प्रॉब्लम होते थे। अब कैटल फार्म आ गए जब से तो ये सहूलत मिल गई है। और आपने बड़ी अच्छी बात की सुबह, नो डाउट जो केयर यहाँ मिलती है ना जानवरों को, ये घर पे आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि घर पे आप जाहिर बात आपको काम पे जाना होता है। आपने बोल दिया बच्चे को भाई इसको फला खिला देना, पिला देना, फला कर देना। और यहाँ पर जो है ना हम हर तरह की वैक्सीन होती है। अच्छा, इसके अलावा बंदे भी होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं भाई किसने चाला खाया किसने नहीं खाया, नहीं खाया तो क्या रीज़न है, बुखार तो नहीं है या कोई और मसला है, क्या है क्या नहीं, तो वो उसी वक्त जो है ना उसको इसका इलाज शुरू हो जाता है।
माशाल्लाह।
तो ये फ़र्क है घर में पालने में और बाहर के पालने में।
ये आजकल जो कैटल फार्म का रुझान बढ़ रहा है ना, लोग यही सोचते हैं कि कैटल फार्म में जानवर की वैक्सीन पूरी कर दी जाती हैं, उनकी केयर पूरी की जाती है, उसकी बनावट को भी।
कोई मसला आप सही फरमा रहे हैं, ये बात भी आपकी किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन असल वजह ये है कि यहाँ जो है वो अपनी सहूलत से प्रॉपर वे में जो है ना इधर उसकी जो है कह लें जानवर की तरबियत हो रही होती है, जो कि घर में वो इंतज़ाम नहीं मौजूद होता। लेकिन जिनके घरों में इंतज़ाम है तो वहाँ बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब अगर आप मेरा देख लें तो मेरे तो
से क्या मुराद है, आपने जानवरों की निगहदाश्त होती होगी।
चले निगहदाश्त ले लें भाई, मेरे अल्फाज को आपने दुरुस्त कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जो निगहदाश्त घर में भी हो सकती है, लेकिन वो सूरत हो सकती है कि आपको खुद निगहदाश्त करनी आती है, अगर नहीं आती तो फिर नहीं हो सकेगी। अब मेरे को देख लें, मेरे वालिद साहब ने जो है कराची में ही शहर में घर के एक कमरे में जो है दो भैंसे रखी हुई थी।
क्या बात है।
अब वो वहां पे जो है वो दो भैंसे भी पलती थी, बकरा बकरियां भी पलती थी, हम भी वहीं पल रहे थे।
अच्छा, इसलिए आपने कहा कि मुझे देख लें।
हाँ, मैंने कहा मुझे देख लें।
अच्छा, मतलब मैं, तो आपने भैंसों का दूध
नहीं
पिया
है। भैंस के दूध पीने की वजह से मैं
खालिस दूध
कि मुझे देख लें, उसके फायदे भी बहुत हुए, ताज़ा बिल्कुल खालिस दूध पीने को
मिला। तो नजर आ रहा है माशाल्लाह।
जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह।
लेकिन ये कि वहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आमीन आमीन। बेसिकली बात वही है कि अगर आप उसकी निगहदाश्त करना जानते हैं तो वो घर पे भी कर सकते हो, कैटल फार्म में भी। अब यहाँ एक प्रॉपर वे में काम हो रहा है, इसलिए जो है ना जानवर सही तौर पे मेंटेन होके चल रहे हैं।
अतीक भाई माशाल्लाह, आपने जो बताया ना कि घर के अंदर वालिद साहब इसे खिदमत करते थे और केयर करने के जो मामला हमारे आसिफ ने गुफ्तगू की कि कैटल फार्म के अंदर केयर होती है, घर में भी करने वाले केयर करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, में आपको यहाँ पे एक हदीस पाक बयान करूँगा कि सहाबी रसूल अबू उमामा बिन सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम मदीने मुनव्वरा में कुर्बानी के जानवरों को खूब खिलाते पिलाते और मोटा करते, दूसरे मुसलमान भी ऐसा ही किया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। शहजाद भाई, ये सिलसिला आज का नहीं है, ख़ास तौर पे कुर्बानी के जानवर बिलउमूम हर जानवर उसकी भरपूर निगहदाश्त करना, अगर आपने जानवर घर पे रखा है आप पाल रहे हैं तो आप पर लाजिम है कि उसकी ग़िज़ा का, उसके पानी का, उसकी बीमारी का, हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है।
माशाल्लाह। अच्छा, एक बात याद रखें, देखें अभी कल का दिन बाकी है, पूरा दिन अगर कोई सुबह ईद कर रहा है तो अभी टाइम है आपके पास, अपने जानवर को जितना उसको खाना है खिलाए पिलाए।
अच्छा शहजाद भाई, होता यही है कि अगर आप किसी को पालते हैं और चंद दिन वो आपके साथ रहता है और आप उसकी खिदमत करते हैं तो उसको भी आपसे उंसियत हो जाती है और आपको भी उंसियत हो जाती है।
इंसान के लिए भी ये वाला उसूल लागू आता है कि जिस तरह इंसान के बच्चे को भी अगर है ना प्यार से मोहब्बत से पालेंगे, उसको है ना तरबियत करेंगे, निगहदाश्त करेंगे, तो सेम कंडीशन हो सकती है।
मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कैटल फार्म। अच्छा गाय की भी बात हुई शहजाद भाई, कुछ वो जिक्र ना करें यानी कि बकरी का, बकरे का जिक्र।
माशाल्लाह,
मेरे आका दो आलम के दाता शबे असरा के दूल्हा मीठे मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई। तो हम अपने गुलाम साबिर भाई से पूछते हैं, गुलाम साबिर भाई के आपको कभी इत्तेफाक हुआ कि आपने कभी बकरी पाली हो और उसकी निगहदाश्त की हो, कुछ इस बारे में हमें बताएंगे आप?
जी मैंने जो है ना बकरियों से मेरा प्यार है, एक बकरी लेके आया गाँव से तो उसमें से बकरियां हो गई 27।
अल्लाह अकबर,
जो अपना पाल के कुर्बानी करना ना उसमें मजा ही हो रहा है ना।
माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो इन्होंने बकरियों का जो जिक्र किया ना और एक बकरी से 27 बकरियां, क्या बरकत है, क्या निस्बत है हुजूर से निस्बत हो जिन जानवर को उसमें तो बरकत ही बरकत है।
जैसे मुझे बच्चों से प्यार है ना ऐसे मेरे बकरियों से प्यार था।
अच्छा आप कह रहे बकरियों से प्यार था, अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं?
अभी बकरियां नहीं है, जो मेरे बेटे जवान हो गए, शादी करवाई, घर छोटा है, इस वजह से मेरे बकरियां बेचनी पड़ी।
अच्छा इसलिए पाल नहीं रहे?
हाँ पाल नहीं रहे।
तो आप कह रहे कि मुझे याद आती है दुख हुआ था, तो वो कौन सी बकरी है?
बड़ी बकरी जो है ना, जब तीन बच्चे दिए थे और बकरी बेच रहा था तो मैं भी रो रहा था और घर वाले भी रो रहे थे, तो बकरी भी रो रही थी।
अल्लाह हू
अकबर, बकरी रो रही थी मतलब कि आंसू निकल रहे?
हाँ आंसू निकल रहे थे बकरी।
अच्छा
हाँ,
जानवर भी मोहब्बत करते हैं शहजाद भाई, जो उनके कमर पे हाथ फेरने वाला उनके करीब जाता है तो वो सर नीचे कर देते हैं, उसके करीब आ जाते हैं जानवर और मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे भाई बकरा था शहजाद भाई, और वो शायद 2 महीने के आसपास की उम्र होगी, हम खरीद के लेके आए थे बकरी के साथ।
केटल फार्म से लाए थे?
नहीं, मैंने एक साहब रोड पे बकरियां बेच रहे थे उनसे खरीदा, दो बकरियां और दो बच्चे। अतीक भाई खरीद के मैं घर पे लाया। शहजाद भाई वो तकरीबन 1.25 साल का हो गया मेरे पास, उसके जरिए नस्ल भी आगे बढ़ी, बड़ा हो चुका था। लेकिन जब अपने घर के बाहर, मेरा ओपन एरिया है मेरे घर के बाहर ना, मैं कभी बैठा करता था ना, यकीन माने शहजाद भाई वो इतना बड़ा बकरा मेरी गोद में आके लेटता था।
अच्छा
जी जी, मेरे गोद में आके लेटता था वो यूं सर हिलाता था, क्यों इतना सदा जब से उसको पाला।
तो आप बकरी का बच्चा कह रहे हैं, आपने एक नाम नहीं रखा था उसका?
ओ सुभान अल्लाह, ये तो मैं भूल ही गया, मैंने हर तकरीबन बकरी के बच्चों को बकरियों के नाम रखे हुए थे।
अच्छा,
मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा बकरा था।
एक मिनट में यहाँ रोकूंगा, शहजादा का मतलब होता है बादशाह का बेटा।
जी हाँ,
है ना, शहजादा
खूबसूरत था माशाल्लाह।
अच्छा आसिफ भाई, कैटल फार्म से आपका ताल्लुक है, हमारा सेगमेंट का नाम भी है कैटल फार्म। तो कभी आपके पुराने दौर में आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ, कोई क्या बताइएगा जरा कुछ?
एक वाकया है, ये है तकरीबन 2012 का।
2012 का यानी के
14 साल पुराना।
मैं न्यू धोराजी में था, हम लोग कुर्बानी दावत इस्लामी के हिस्सेदारी का कुर्बानी कर रहे थे। इसमें एक आदमी ने बोला था भाई ये 7 हिस्से मेरे हैं एक ही आदमी के, मगर मेरी कुर्बानी आप करिएगा तीसरी ईद को, ठीक है 11-12 बजे। मैंने बोला ठीक है। अब उसमें एक जानवर रह गया था, बाकी तो हमने सेकेंड ईद को था हमारा, वो हमने सब कर लिया था। तीसरी ईद के लिए जो है ना वो फिर मैं कसाई लेके गया, मैंने बोला यार इसको कुर्बानी इसकी करवा लेते हैं और इसको हिस्सा दे देते हैं। अच्छा जब जैसे इसकी जो है ना हमने, मैं हुआ ये था कि कसाई का अंगूठा जो है ना वो जख्मी था।
अच्छा,
तो उसने छुरी पकड़ी हुई थी और मैंने जो है ना मोड़ा जो होती है मोड़ी लगी हुई होती है वो मैंने पकड़ के घुटना लगाया हुआ था कि छुरी फेल ले। मैं बहुत करीब था यानी जानवर के बहुत करीब था, तो जब इसने छुरी फेली ना तो पता नहीं अंदर से एक ऐसी, मेरे को एक ऐसी बू तो नहीं बोल सकते जाहिर बात कुर्बानी का जानवर, मगर एक ऐसी महक आई कि मुझे मज़ा नहीं आया उस वक्त।
अच्छा,
बहरहाल वो जानवर कट गया और मैंने इनको बोल दिया, वो खुद भी आए हुए थे, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, खाल चली गई दावत इस्लामी में। मगर उसके बाद है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई,
अल्लाह
तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर वो छोटे भाई हैं मेरे, سلیم بھائی ہے وہ میرے کو ہاسپٹل لے گئے.
آپ کو اندازہ ہو گیا تھا یہ کہ وہ بھو کی وجہ سے؟
نہیں نہیں نہیں
اس وقت نہیں ہوا
تھا نا, بس یہ کہ بس چکر سے آ رہے تھے اور عجیب سی مطلب
کیفیت نہیں ہوئی آپ
کی. ہاں فیلنگ, مگر وہ بدبو یقین کریں ناک میں. آج کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟
اچھا 14 سال
ہو گئے تقریباً.
آج بھی اگر کہیں وہ بدبو محسوس ہوتی ہے تو میں فوراً بول رہا ہوں یہ معاملہ یہ والا ہے. بہرحال پھر دو دن بعد یا ایک دن بعد انہوں نے مجھے, میرے گھر کے پاس ایک ڈاکٹر ہے, انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا بھائی فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤں, وہاں پہ میری جان پہچان ہے. میں وہاں ایڈمٹ ہو گیا تو پھر وہاں سے سارے رپورٹ آیا تو ڈائگنوز یہ کیا انہوں نے کہ یہ کانگو کا وائرس ہے.
کانگو
یہ جانوروں میں ہوتا ہے؟
جانوروں میں ہوتا ہے, یہ افریقہ کی.
اچھا یہ کانگو ہے, دونوں بولا جاتا ہے.
ہاں بہرحال یہ انہوں نے ڈائگنوز کیا. اب وہ جیسے ہی ہاسپٹل والوں کو پتہ چلا, انہوں نے جو ہے نا مجھے بولا بھائی آپ یہاں سے جائیں,
اللہ
کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے, یہ آپ بس کہیں بھی جائیں آپ یہاں سے نکلیں.
اچھا
تو وہ چھوٹے بھائیوں نے فون کیا ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب نے ڈبلیو ایچ او کو فون کر دیا اور وہاں سے سختی سے آرڈر آ گیا کہ بھائی یہ پیشنٹ نہیں جائے گا. جب ڈبلیو ایچ او سے فون آیا تو انہوں نے پورا کوریڈور میرا خالی کروا دیا.
ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا تھا؟
ٹریٹمنٹ کیا ہوتا تھا, وہ ڈاکٹر ایک آدھا ایک گلوکوز یہ لگا کے بس وہ چلا جاتا تھا. کینولا لگا ہوا تھا, آتا بس فٹافٹ 2 منٹ میں لگا کے وہ چلا. اس کا کوئی باقاعدہ علاج, باقاعدہ کوئی ویکسین تھی نہیں.
تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا, وہ ڈاکٹر کیسے آ جاتا تھا؟ کچھ سیفٹی کر کے آتا تھا؟
بہت خطرناک سیفٹی کر کے آتا تھا. آپ دیکھتے تو آپ بولتے کہ یار یہ کوئی جیسے اسپیس میں نہیں جاتے, اتنا بڑا منہ والا وہ پورا یونیفارم پہن کے خلا میں جاتے ہیں جو یونیفارم پہن کے.
اچھا یہاں مجھے بتائیے گا یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے یہ؟
ہاں کورونا 2019 آیا نا.
اچھا اس سے پہلے کی
2012
میں آیا نا.
جی 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 پورے وہی سیم کنڈیشن
لگ رہی
ہے. اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا کہ آپ کا وائٹ سیل کم ہو رہے کم ہو رہے کم ہو رہے. میرے آخری وائٹ سیل جو تھے نا وہ آگے تھے 8,000 روپے بالکل. اور ڈاکٹروں نے جو ہے نا بولا تھا کہ بھائی اس کے ہاتھ باندھو, اگر اس نے کہیں خارش کی اور اسکن اس کی پھٹ گئی نا تو یہ بلڈ رکے گا نہیں, اتنی سینسیٹیو اسکن ہو گئی ہے پورے بدن کی. تو بہرحال مگر جسے اللہ زندگی دے, دو دوست آئے ہوئے تھے رات کے 2 بجے وہ مجھ سے ملنا, جس کا تعلق فیضان مدینہ سے بہت کلو تھے دعوت اسلامی سے. تو وہ آئے.
دوست کون تھے آپ کے؟
وہ چھوٹے بھائی کے دوست تھے
وہ دعوت اسلامی میں. ہاں کیا نام ہے ان کا؟
ایک اپنے فضل رضا تھے.
فضل رضا
اور ایک اپنے حاجی امین جو نات خواہ ہیں اپنے
نات خواہ. اچھا سینئر نات خواہ جو ہے.
ہاں تو وہ ان کو بھائی میرا لے کے آیا تقریباً رات کے 2 بجے یا 1 بجے اس ٹائم پہ نا, تاکہ کیونکہ انٹری بند تھی وہاں پہ پورے کوریڈور میں کوئی آ نہیں سکتا تھا. تو خاموشی سے لے کے آ گیا, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سارے رپورٹ وغیرہ بھائی کی کہانی سنی میری, سارے معاملات دیکھے. انہوں نے وہیں سے امیر اہل سنت کو فون کیا.
اللہ اکبر کیا بات ہے مدینے
کی. وہ امیر اہل سنت کو انہوں نے فون کیا کہ بھائی حضرت صاحب یہ آپ کا مریض جو ہے نا یہ اینڈ پہ ہے ابھی, کیونکہ ڈاکٹر نے چھوٹے بھائی کو یہاں تک بول دیا تھا کہ بھائی اب اس کا اینڈ ہے اور ہم اب اس کو جو ہے نا 3 یا 2 پلاسٹک میں پیک کر کے دیں گے, آپ کو کھولنا نہیں ہے, کھولنا نہیں ہے.
اللہ
گھر والوں کو بھی اس کو شکل نہیں دکھا, مطلب بہت ایموشنل معاملات تھے, ایسے جذباتی تھے کہ بس. بہرحال اللہ کا شکر ہے ہوا یہ کہ امیر اہل سنت نے ان کو وہاں بلایا فیضان مدینہ اور ایک پانی کی بوتل دی اور بولا یہ بوتل ختم نہیں ہونی چاہیے, پانی ڈال ڈال کر پیتے رہو, بوتل ختم نہیں ہونی چاہیے. اس میں تعویذات بھی تھے, پتہ نہیں کون کون سا پانی تھا. بہرحال امیر اہل سنت کا ہاتھ کا پانی وہ پھر میں پیتا گیا. آپ یقین کریں میں پانی پیتا گیا اور میرے وائٹ سیل بھرتے, وائٹ سیل بھرتے پانی پیتا گیا, وائٹ سیل بھرتے.
ماشاءاللہ.
اچھا اس میں سب سے بڑا ہاتھ امیر اہل سنت کا تو ہے مگر میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ میری والدہ وہ آپ نے شاید پپیتے کا عرق نہیں پیا ہوگا, شاید نہیں
میں نے پیا.
وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے, اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ناک کے پاس تک نہیں لے جا سکتے. مگر وہ میری والدہ نے میرے برابر میں بیٹھ کے میرے کو پیار سے ایک ایک چمچ کیونکہ پوری کٹوری پلا دیتی تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو میری لائف ہے نا, میرے کو نئی جو زندگی ملی ہے نا, یہ حضرت صاحب کی مہربانی سے ہے.
ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, دشمنوں کی میلی نظر سے بچائے اور ان کا فیض ہم سب پہ جاری اور ساری.
اچھا یہ امیر سنت کی بات ہوئی, انہوں نے جو بیان فرمایا ہے تو ایک شعر یاد آ گیا ہے.
اللہ کیا بات.
طبیب حاذق ایک بیٹھا ہے فیضان مدینہ,
سبحان اللہ,
طبیب حاذق ایک بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں، سنا ہے درد دل والے یہاں کثرت سے آتے ہیں۔
اللہ اکبر، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔
اچھا، ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ شوکت بھائی اردو سپیکنگ ہے تو میں آپ کو اردو میں شکریہ ادا کروں۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آصف بھائی میمن ہے تو آپ کے میمنی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو شکریہ آئیں جی، مہربانی آئیں ٹائم دینی ہے پروگرام میں اچھی بھی۔ عتیق اتاری صاحب کا، راجپوت صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تھاری آمد کا بہت شکریہ، آواں جی آمد جو ڈاڈو شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔
شہزاد بھائی تمہاری مہربانی۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ، تمہاری بھی مہربانی۔
جزاک اللہ خیرن۔ یہ ہے ہمارے دعوت اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، پھر آپ کے پاس عید کے
تیسرے دن ملیں گے۔ عید اسپیشل آپ نے کیا دیکھا ہے پروگرام کے ساتھ، اور دیکھتے رہیے
مدنی چینل۔
عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے۔ مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔